एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का स्वागत। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो थोड़ा संजीदा है, लेकिन मुझे लगता है हम सबके जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है।
जी हाँ, बिल्कुल। आज हम बात करने वाले हैं डेनिश दार्शनिक सोरेन किर्केगार्ड की एक बहुत ही प्रभावशाली और सच कहूँ तो थोड़ी सी मुश्किल किताब, द सिकनेस अनटू डेथ।
हाँ, मृत्यु तक की बीमारी, नाम ही थोड़ा भारी है।
है तो, पर हमारे पास इस पर कुछ अच्छे नोट्स और सारांश हैं, तो कोशिश करेंगे कि इसके जो मूल विचार हैं उन्हें आसानी से समझ सकें।
और ये मुश्किल भले लगे, पर आज के ज़माने में मुझे लगता है इसकी अहमियत शायद पहले से भी ज़्यादा है। मतलब आजकल इतने सारे लोग वो एक खालीपन सा महसूस करते हैं ना।
हाँ, या जिंदगी में कोई मतलब नहीं दिख रहा, या बस एक बेचैनी सी है।
हाँ वही तो, कीर्केगार्ड जिसे निराशा या डिस्पेयर कहते हैं, वो शायद इसी एहसास के बहुत करीब है।
बिल्कुल, और उनका कहना था कि ये निराशा सिर्फ मूड खराब होना या दुखी होना भर नहीं है।
अच्छा।
हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी एक तरह की आध्यात्मिक बेचैनी है, आत्मा की एक बीमारी। और सबसे चौंकाने वाली बात, हो सकता है हम में से ज्यादातर लोग इसमें जी रहे हों,
अरे बाप रे,
बिना ये जाने हुए। तो चलिए आज इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं किर्केगार्ड हमें अपने अंदर झांकने के लिए क्या नजर दे सकते हैं।
तो पहले थोड़ी बात इस विचारक की ही कर लेते हैं, सोरेन किर्केगार्ड। ये 19वीं सदी के थे, है ना, 1813 से 1855 तक।
हाँ, डेनमार्क के दार्शनिक थे और कई लोग उन्हें अस्तित्ववाद यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म का फादर फिगर मानते हैं। वो सोच जो इंसान के होने, उसकी आज़ादी, उसकी जिम्मेदारी पर जोर देती है।
और उनकी सोच सिर्फ किताबी नहीं थी, ये बात मुझे दिलचस्प लगती है, उनके अपने तजर्बे जैसे।
हाँ, उनके अपने जीवन के अनुभव, अपने पिता के साथ उनका जो मुश्किल सा रिश्ता था, या उनकी टूटी हुई मंगनी।
ओह हाँ,
और वो खुद भी एक तरह की उदासी और चिंता से जूझते थे, तो इन सब ने उन्हें इंसान की गहरी भावनाओं, खासकर ये निराशा जैसी चीजों को समझने में एक अलग ही, मतलब एक पर्सनल टच दिया। वो सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी लिख रहे थे।
उनका लिखने का ढंग भी तो अलग था, वो अक्सर असली नाम से नहीं लिखते थे।
हाँ, अलग अलग छद्मनाम, सूडोनिम्स इस्तेमाल करते थे, जैसे कोई किरदार कहानी सुना रहा हो। द सिकनेस अनटू डेथ उन्होंने एंटी क्लाइमैक्स नाम से लिखी थी।
एंटी क्लाइमैक्स,
हाँ, जो एक तरह से आदर्श ईसाई नजरिए को दिखाता है। शायद वो अपनी जो निजी उलझने थी उनसे थोड़ा ऊपर उठकर एक बड़ी तस्वीर पेश करना चाहते थे।
अच्छा, मतलब उन्होंने फिलॉसफी, साइकोलॉजी, धर्म सबको मिला दिया एक तरह से।
बिल्कुल, जो उस वक्त के लिए बड़ी नई बात थी। उन्होंने भारी दुनिया से ज्यादा इंसान की भीतरी दुनिया पर फोकस किया, उसके डर, उसकी उम्मीदें, उसके चुनाव।
तो फिर ये किताब द सिकनेस अनटू डेथ आखिर कहती क्या है, इसका मतलब निचोड़ क्या है?
देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये निराशा का एक बहुत गहरा एक्सरे है, मनोवैज्ञानिक भी और आध्यात्मिक भी। किर्केगार्ड कहते हैं ये कोई आम बीमारी नहीं है।
जैसे सर्दी जुकाम।
हाँ बिल्कुल नहीं, ये आत्मा की बीमारी है, एक ऐसी हालत जहां इंसान ना पूरी तरह जी पाता है ना मर पाता है। शरीर तो चलता रहता है पर अंदर से आत्मा जैसे खोखली होती जाती है।
ओह, और ये निराशा आती कहाँ से है, क्या वजह है इसकी?
उनका कहना है कि इंसान होना ही अपने आप में एक तनाव वाली बात है। हम एक अजीब सी कश्मकश में जीते हैं।
कश्मकश, कैसी कश्मकश?
जैसे हम सीमित हैं, फाइनाइट हैं, हमारा शरीर है, सीमाएं हैं, हम समय में बंधे हैं।
हाँ ये तो है।
और साथ ही हम असीम भी हैं, इन्फिनिट। हमारे सपने हैं, कल्पना है, कुछ बड़ा करने की चाह है। हम वक्त में जीते हैं, टेम्पोरल हैं, हर पल गुजर रहा है, पर हम में अनंत काल, इटर्निटी की एक प्यास भी है।
और वो आज़ादी और सीमाओं वाली बात भी थी ना।
बिल्कुल, हमें चुनने की आज़ादी मिली है, फ्रीडम, पॉसिबिलिटी। हम कुछ भी बन सकते हैं पर हम अपनी हकीकत, नेसेसिटी, लिमिटेशन से भी बंधे हैं। हमारा अतीत, हमारे हालात, हमारी क्षमताएं।
तो निराशा इसी कश्मकश से पैदा होती है, जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है।
एग्जैक्टली, किर्केगार्ड के मुताबिक निराशा इसी तनाव, इसी संतुलन के बिगड़ने से पैदा होती है।
और सबसे हैरत अंगेज बात तो ये थी कि ज्यादातर लोग इसी निराशा में जी रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं, वो अचेतन निराशा वाली बात।
हाँ, अनकॉन्शियस डिस्पेयर, मतलब आत्मा बीमार है पर मरीज को खबर ही नहीं।
ये तो बड़ी डरावनी बात लगती है।
है तो, और किताब का मकसद यही है कि हम निराशा के इन छिपे हुए और जाहिर रूपों को पहचानें और फिर वो रास्ता दिखाती है कि इस बीमारी से निकलकर एक सच्चा प्रामाणिक जीवन, ऑथेंटिक सेल्फहुड कैसे जिया जाए।
और उनके लिए रास्ता क्या है?
उनके लिए ये रास्ता ईश्वर में विश्वास और एक आस्था की छलांग, लीप ऑफ फेथ, से होकर गुजरता है। आगे चलकर वो निराशा को पाप, सिन भी कहते हैं, पर एक बहुत ही अलग गहरे मतलब में।
अच्छा, चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं। किताब के पहले हिस्से में वो निराशा के अलग अलग रूपों की बात करते हैं। शुरुआत होती है स्व यानी सेल्फ की एक दिलचस्प परिभाषा से।
हाँ, वो कहते हैं स्वयं एक संबंध है जो स्वयं से संबंधित है और स्वयं से संबंधित होकर दूसरे ईश्वर से संबंधित होता है। सुनने में थोड़ा उलझावा लगता है ना?
हाँ, थोड़ा खोलिए इसे। मतलब हमारा मैं कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये फिक्स नहीं है।
बिल्कुल नहीं। ऐसे सोचिए जैसे कोई रस्सी पर चल रहा हो।
ओके।
एक तरफ हमारी सीमाएं हैं, दूसरी तरफ हमारे सपने। एक तरफ हमारी आजादी है, दूसरी तरफ हमारी मजबूरियां। हमारा स्व इन दोनों सिरों को पकड़कर बैलेंस बनाने की लगातार कोशिश है। और ये सारी कोशिश उस शक्ति कीर्केगार्ड के लिए ईश्वर के सामने हो रही है जिसने हमें ये रस्सी, ये क्षमता दी है। निराशा तब होती है जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है।
कैसे बिगड़ता है ये बैलेंस? कुछ उदाहरण दे सकती हैं?
हाँ, जैसे मान लीजिए कोई है जो सिर्फ ख्याली पुलाव पकाता रहता है, सपनों की दुनिया में खोया है। ये अनंतता में खो जाने वाली निराशा है। वो अपनी असलियत, अपनी सीमाओं को भूल गया है।
अच्छा।
या फिर दूसरी तरफ कोई अपनी नौकरी, अपने रूटीन, समाज के नियमों में इतना ज्यादा फंस गया है कि उसने सपने देखना ही छोड़ दिया है। वो बस एक मशीन का पुरजान के रह गया है। ये सीमितता की निराशा है।
समझी, दोनों ही सूरतों में बैलेंस गड़बड़ है।
बिल्कुल, दोनों ही हालतों में स्व का संतुलन बिगड़ा हुआ है। दोनों ही निराश हैं, भले ही उन्हें लगे कि वो ठीक हैं या उन्हें पता ही ना हो।
और फिर वो चेतना के स्तर पर भी बात करते हैं कि हमें अपनी निराशा का एहसास है या नहीं।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक होती है कमजोरी की निराशा। इसमें इंसान को पता होता है कि वो दुखी है, कुछ कमी है। वो शायद दूसरों जैसा बनना चाहता है, अपनी हालत पर रोता है, पर खुद को बदलने या स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता।
मतलब वो असल में खुद होने से कतराता है।
हाँ बिल्कुल, वो अपने वास्तविक स्व को जीना नहीं चाहता।
और दूसरी, वो ज्यादा खतरनाक बताई थी आपने।
हाँ, दूसरी ज्यादा तीव्र है, अवज्ञा की निराशा, डिफायंस। यहां इंसान अपनी तकलीफ को जानता है पर वो झुकने को तैयार नहीं। वो कहता है मैं जैसा हूं ठीक हूं, मुझे किसी ईश्वर या सहारे की जरूरत नहीं, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा।
हाँ, ये तो विद्रोह जैसा है।
बिल्कुल, वो अपनी पीड़ा को ही अपनी पहचान बना लेता है, अपनी सीमाओं के खिलाफ एक तरह का विद्रोह करता है। कीर्केगार्ड इसे दानवी निराशा कहते हैं, क्योंकि ये ईश्वर की दी हुई पहचान को ठुकराकर हठपूर्वक अपनी पहचान बनाने की जिद है।
ये तो वाकई बहुत गहरा विश्लेषण है। लेकिन फिर वो निराशा को पाप क्यों कहते हैं? ये थोड़ा चौंकाता है। हम तो पाप का मतलब चोरी, झूठ, ऐसी चीजें समझते हैं।
हाँ, यही कीर्केगार्ड पारंपरिक सोच से एकदम अलग जाते हैं। किताब के दूसरे हिस्से में वो इसी निराशा को धार्मिक नजरिए से देखते हैं। उनके लिए पाप कोई नैतिक गलती नहीं, मतलब ये नहीं कि आपने कोई रूल तोड़ा।
तो फिर क्या है?
उनके लिए पाप है ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते का टूटना, जब हम जानते हैं कि एक बनाने वाली शक्ति है या हमें उस शक्ति का एहसास है और फिर भी हम या तो वो बनने से इनकार करते हैं जो हमें बनना चाहिए। ये कमजोरी वाली निराशा हुई।
हाँ,
या फिर हम खुद ही खुदा बनने की कोशिश करते हैं, ये अवज्ञा वाली निराशा। तो यही निराशा पाप बन जाती है। ये मूल रूप से ईश्वर से मुंह मोड़ लेना है।
तो उनकी वो परिभाषा याद है, पाप है ईश्वर के समक्ष निराशा में स्वयं न होने की इच्छा करना या निराशा में हठपूर्वक स्वयं होने की इच्छा करना।
बिल्कुल यही है। मतलब जब आप ईश्वर की मौजूदगी को जानते हुए भी अपने सच्चे स्वरूप को जीने से इनकार करते हैं तो वही निराशा पाप बन जाती है।
तो उनका ये भी कहना था कि ये सिर्फ अज्ञानता नहीं है, जैसे सुकरात मानते थे कि इंसान गलत इसलिए करता है क्योंकि उसे सही का पता नहीं।
बिल्कुल नहीं, कीर्केगार्ड कहते हैं नहीं, मामला इच्छा शक्ति का है, विल का। इंसान जानते बूझते भी गलत चुन सकता है। पाप सिर्फ ना समझ ही नहीं, एक जानबूझकर किया गया विद्रोह भी हो सकता है।
और ये पाप भी मतलब बढ़ता जाता है, इसके भी लेवल है।
हाँ, संक्षेप में कहें तो पहले इंसान अपने किए पर निराश होता है, पर माफी मांगने के बजाय अपराध बोध में डूब जाता है। फिर वो इस बात पर ही शक करने लगता है कि क्या माफी मिल भी सकती है, और आखिर में वो उस सहारे को ही नकार देता है जो उसे बचा सकता था। कीर्केगार्ड के लिए वो ईसाई धर्म था, ये ईश्वर से पूरी तरह दूर चले जाना है, निराशा की चरम सीमा।
बाप रे, काफी इंटेंस है ये तो। इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकालें? कुछ मुख्य बातें जो हम याद रख सकें?
पहली बात तो ये कि इंसान होना एक लगातार चलने वाला काम है, एक संतुलन साधने की कोशिश। हम कभी बन नहीं जाते, हम हमेशा बनते रहते हैं।
हाँ, ये कोई मंजिल नहीं, एक सफर है।
बिल्कुल। दूसरी और ये शायद सबसे चौंकाने वाली बात है, निराशा बहुत आम है और अक्सर छिपी रहती है। हो सकता है जैसे हम कामयाबी या खुशी समझ रहे हों, वो अंदर के खालीपन का सिर्फ एक मुखौटा हो।
हाँ, जैसे सोशल मीडिया पर सब परफेक्ट दिखता है पर अंदर कहानी कुछ और होती है।
एग्जैक्टली। तीसरी, खुद को जानना, अपनी अंदरूनी हालत को समझना बहुत जरूरी है। अपनी निराशा को पहचानना भले ही मुश्किल लगे, दर्दनाक हो, पर इलाज यहीं से शुरू होता है।
हाँ, आप उस बीमारी का इलाज कैसे करेंगे जिसके बारे में आपको पता ही नहीं।
सही बात। चौथी, पाप का एक नया मतलब समझना। यह सिर्फ नियम तोड़ना नहीं बल्कि बनाने वाले के साथ रिश्ते का सवाल है। क्या हम वो बनने को तैयार हैं जो हम बन सकते हैं?
पांचवी, सच्ची आस्था सिर्फ मान लेना नहीं है बल्कि एक तरह की छलांग है, भरासे का कदम। तर्क जहां खत्म होता है, आस्था शायद वहां से शुरू होती है। किर्केगार्ड के लिए यही निराशा का असली और स्थायी इलाज है।
और आखिर में, जिम्मेदारी हमारी अपनी है। कोई समाज, कोई सिस्टम हमें अंदर से नहीं बदल सकता। अपने स्व को ढूंढने और बनाने का सफर हर किसी को खुद तय करना होता है, अकेले।
किताब में कई ऐसी बातें हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ कोट्स याद करें।
हाँ, एक तो वो स्व की परिभाषा ही बहुत गहरी है। स्वयं एक संबंध है जो स्वयं से संबंधित है और स्वयं से संबंधित होकर दूसरे से संबंधित होता है। ये याद दिलाता है कि हमारा होना एक प्रक्रिया है और ये ईश्वर से जुड़ी है।
और ये वाली बात तो मुझे हमेशा लगती है, सबसे बड़ा खतरा स्वयं को खो देना दुनिया में बहुत चुपचाप हो सकता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कितनी सही बात है, हम काम, पैसे, शोहरत में इतने उलझ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कब हमने अपने असली मैं को खो दिया। सब कुछ बाहर से नॉर्मल लगता है।
बिल्कुल। और ये भी कितना पावरफुल है, हिम्मत करने का मतलब है क्षण भर के लिए अपना संतुलन खोना, हिम्मत ना करने का मतलब है स्वयं को खो देना।
हाँ, मतलब अगर वाकई जीना है, कुछ ऑथेंटिक बनना है, तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। सेफ खेलने के चक्कर में हम शायद खुद को ही खो दें।
सही कहा। और आखिर में ये विचार कि पाप का विपरीत गुण नहीं बल्कि आस्था है, ये सोचने का ढंग ही बदल देता है।
हम सोचते हैं पाप का उल्टा पुण्य है। कीकेगार्ड कहते हैं नहीं, पाप मतलब टूटा हुआ रिश्ता और उसका इलाज है जुड़ा हुआ रिश्ता यानी आस्था।
बात सिर्फ अच्छे काम करने की नहीं बल्कि रिश्ते को ठीक करने की है।
बिल्कुल।
अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये सब गहरी बातें तो ठीक हैं, पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इनका क्या मतलब? हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
पहला कदम तो शायद यही है कि हम ईमानदारी से खुद से पूछें, क्या मैं वो जिंदगी जी रही हूँ, रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ, या वो जो दुनिया मुझसे चाहती है? हाँ, क्या मेरी खुशी बाहरी चीजों पर टिकी है, नौकरी, पैसा, दूसरों की तारीफ? क्या मैं अपने अंदर की आवाज सुन पा रही हूँ?
बिल्कुल। दूसरा, यह हमें दूसरों को समझने में मदद कर सकता है। जब हम जानते हैं कि हर इंसान अपने अंदर एक कश्मकश से गुजर रहा है, तो शायद हम ज्यादा हमदर्द बन सकें।
हाँ, किसी का गुस्सा या चिड़चिड़ापन शायद उसकी अपनी अंदरूनी निराशा का नतीजा हो।
हो सकता है। तीसरा, जिंदगी में जब मुश्किल वक्त आता है, कोई नुकसान, कोई बीमारी, डिप्रेशन या एंग्जाइटी, तो हम उसे सिर्फ एक मुसीबत की तरह ना देखें। हो सकता है ये एक इशारा हो कि हमें अपने अंदर कुछ बदलने की जरूरत है।
हाँ, जिंदगी को ज्यादा गहराई से जीने का एक मौका।
बिल्कुल। और चौथा, ये हमें अपनी पहचान किसी टिकाऊ चीज में बनाने के लिए प्रेरित करता है। कीर्केगार्ड के लिए वो ईश्वर थे, पर आम जिंदगी में ये हमारे मूल्य हो सकते हैं, हमारा कोई मकसद, कोई सिद्धांत।
हाँ, कुछ ऐसा जो बाहरी हालातों के बदलने पर भी हमें थामे रखे, अपनी पहचान सिर्फ नौकरी या सोशल स्टेटस पर बनाने की बजाय।
तो कुल मिलाकर किर्केगार्ड हमें याद दिलाते हैं कि इंसान बनना एक आसान काम नहीं है, ये एक संघर्ष है, एक आध्यात्मिक यात्रा, और जिसे हम अपनी कमजोरी या परेशानी समझते हैं, वो शायद हमारे अंदर के गहरे असंतुलन का संकेत हो।
और ये भी कि निराशा, जिसे हम इतना बुरा मानते हैं, वो असल में एक नए, ज्यादा सच्चे जीवन की शुरुआत बन सकती है, अगर हम ईमानदारी से उसका सामना करें, अपनी हकीकत को स्वीकारें और शायद किसी बड़ी सच्चाई या शक्ति के लिए खुद को खोलें। ये किताब हमें बाहर की दुनिया से ज्यादा अंदर की दुनिया पर ध्यान देने को कहती है।
और जाते जाते एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाते हैं। आज की ये दुनिया जो इतनी तेज रफ्तार है, जहां बाहरी कामयाबी और फौरी खुशी पर इतना जोर है, जहां हम हर वक्त दूसरों से जुड़े हैं पर शायद खुद से कटे हुए हैं, कहीं हम किर्केगार्ड की उस अचेतन निराशा के सबसे अच्छे उदाहरण तो नहीं बन गए हैं?
सोचने वाली बात है, क्या हम वाकई जागे हुए जी रहे हैं या बस भीड़ के साथ सोए हुए चले जा रहे हैं बिना ये जाने कि हम कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।